साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चौरासी लाख योनियां हैं, पशु पंछी वृक्ष जानवर सारे, उसके बाद फिर सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य योनि जो हम सबको मिली हुई है। इसके बाद और भी है, देवता लोग हैं, लेकिन देवताओं से भी बढ़कर मनुष्य है। ये मानव शरीर सबसे ज़्यादा दुर्लभ है, सबसे ज़्यादा महत्व का है, सबसे लोग तरसते हैं, देवता भी तरसते हैं। इस मनुष्य शरीर में आकर ही प्राणी वो पद प्राप्त कर सकता है, वो स्थिति प्राप्त कर सकता है जो और किसी योनि में शरीर में संभव नहीं है। तो वो मनुष्य शरीर हम सबको मिला हुआ है, स्त्री हो या पुरुष, उसमें कोई अंतर वाली बात नहीं है। स्त्रियां भी वो बहुत बड़ी उन्नति परमात्मा को, अखंड आनंद को प्राप्त कर सकती हैं, मनुष्य भी कर सकते हैं, लेकिन उन सब के लिए है ये मनुष्य शरीर। क्यों, इसका क्या कारण है? पशु पंछी हैं, पशु है, उनके गले में रस्सा है, है? जो पालतू हैं। और दूसरे जानवर हैं, बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते, बस भूख लगी खा लिया, नींद आई सो लिए, और किसी ने हमला किया अपना हमला कर दिया, बस शरीर तक ही है। पशु खेत में जाता है, चारे में मुंह डालता है, पीछे से डंडा पड़ता है, भाग जाएगा, दोबारा फिर वहीं पर आ जाएगा। ये बकरों की लाइन लगी हुई है, बकरा कट रहा है, लाइन में लगे हुए, किसी को कोई परवाह नहीं है। ये क्या है? ये पशु शरीर होते हैं। बांधे चले जा रहे हैं, इधर उधर भागे चले जा रहे हैं। एक भेड़ कुएं में गिरी और दौड़ती हुई क्या, बाकी सब कुएं में गिरती चली जाती, ये क्या है? ये पशुपना है ना? भागे चले जा रहे, भागे चले जा रहे, एक के पीछे सारे, भेड़ चाल, नामी भेड़ चाल। लेकिन मनुष्यों में ऐसा नहीं है, जिसमें ऐसा नहीं है वही मनुष्य है। मनुष्य अपने दिमाग से सोच, उसके पास दिमाग है, विचार शक्ति है, नहीं तो खाना पीना पशु पंछी भी करते हैं, सोना और मनुष्य भी करे, यदि केवल इतना ही करे तो फिर क्या अंतर हुआ? तो मनुष्यों में जो विशेषता है वो विचार की है, दिमाग की है। वो विचार करे तो उसको पता लग सकता है कि ये काम मेरे लिए सही है, ये काम मेरे लिए गलत है, मैं ऐसा करूँगा तो इसका फल मुझे ये मिलेगा, है ना, तो वो सोच के करता है। अब जैसे एडमिशन लेना हो, बहुत सोचते हैं मेडिकल में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, इधर जाएंगे तो ये होगा, इधर जाएंगे तो ये होगा, है ना। छोटे बच्चे नहीं सोच सकते, जैसे मनुष्य का मतलब है तो नहीं, मैंने तो यही करना है, क्यों तो ऐसा करने से मुझे ये लाभ मिलेगा, ये मैं कर सकता हूँ, मेरा शौक इधर को है। अविचार शक्ति है, तो जैसा हम करते हैं, फिर दूसरी बात यह है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। आपे बीज आपे ही खाओ। ऐसा संभव नहीं होता है कि हम कर्म तो गलत करें और उसका परिणाम अच्छा मिल जाए। देखने में चाहे इतना आसान नहीं है ये गहना कर्मणोगति, लेकिन है ये सिद्धांत बिल्कुल सही। कथा उस समय की है जब भगवान राम को वनवास मिला, सीता सहित लक्ष्मण सहित जंगलों में है। अभी एक दिन राजा बनने वाले थे और दूसरे दिन वनवास हो गया। आज्ञा हो गई पिताजी की, चलो मंत्रा की मंत्रा, तो जंगल में जा रहे। माता सीता ऐसे फूस के ऊपर लेटे हुए हैं, राम जी लेटे, लक्ष्मण जी पैरा दे रहे हैं, उधर गुहराज केवट वो वहाँ पर आपस में चर्चा कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं गुहराज। कहते ऐसे राजा राम, ऐसे ऐसे सुकुमार शरीर, और कैसे ले रहे, मंत्रा को कोसना शुरू कर दिया, कैकेयी को कोसना शुरू कर दिया कि उसने सारी गड़बड़ की है, वो बहुत शैतान है, मेरा बस चले तो उसको ये कर दूं वो कर दूं। तो लक्ष्मण जी वहाँ पर उसको समझाते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ पर उन्होंने वाल्मीकि जी के, व्यास जी के शब्दों में लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाती कुबुद्धिरेषा। ये सूत्र समझ लीजिए कि सुख के दुख के देने वाला दूसरा नहीं है कोई। जो उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे ऐसा किया, यही मूल बुद्धि है, हैं? तो जैसा कोई कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। लेकिन ये इतना आसान कर्म जाल है। अहम करोमि इति वृथाभिमाना स्व कर्म सूत्र ग्रथितो हि योगा। फिर आगे कहते हैं तो ऐसा तो कोई नहीं चाहता कि मैं दुख वाला कर्म करूं, जानबूझ के गलत कर्म करता नहीं है। तो वहाँ पर कहते हैं स्व कर्म सूत्र ग्रथितो हि योगा। कर्म जाल है ये, अहम करोमि मैं ऐसा करता हूँ। परमात्मा को भूलकर जब वो संस्कार पढ़ते हैं, एक कर्म किया उसके बाद दूसरा, जाल आगे से आगे आगे से आगे, ऐसा कर्मों का जाल जो उसने खुद ही बुना है उसमें ऐसा उलझ जाता है कि दुख पर दुख उठाने पड़ते हैं। इतना इतना आसान नहीं है कर्म जाल से छूटना। हाँ, लेकिन इतना निश्चित है कि दूसरा मुझे कोई दुख नहीं देता है, मेरे ही कर्म, मेरे ही अहम, ऐसे अभिमान पूर्वक कर्मों का जाल जो मैंने बुना था उसमें मैं उलझ गया हूँ, है ना। एक सड़क पर चलना शुरू हुआ, इधर खाई है, इधर पहाड़ है। अब वो चाहे कि ये तो रास्ता बहुत कठिन है, अब ये रास्ता छोड़ें, अच्छा रास्ता पकड़ेंगे, लेकिन कहाँ, इधर खाई है, इधर ऊंचा पहाड़ है, नहीं बीच में रुक सकते हैं। यदि रुकें तो क्या होगा, कोई रहने की जगह नहीं है, थोड़ा रुकेंगे ठहरेंगे, मजबूरन उसको आगे बढ़ना होगा। पीछे तो देख ही चुका कहाँ, पीछे रास्ता बंद है। तो यही कर्म जाल होता है। एक बार जिस कर्म जाल में, जिस क्षेत्र में हम चले गए हैं, बढ़ गए हैं, तो फिर मन मर्जी, एक बार शुरू ही ना करो, विचार के करो, और फिर जब चल पड़े हैं तो पूरा रास्ता तय करके ही वो फिर मोड़ आएगा है? फिर चुन लेना चौरास्ते पर, मोड़ पर, ये करें कि वो करें, फिर निर्णय कर लो कि ये नहीं करना है, ये करना है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कोई दिशा नहीं दिखती है, इधर जाए तो भी हाँ खाई है, उधर जाए पहाड़ है, पीछे जाए कंठ का किरण है, आगे थोड़ा बहुत बढ़ना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आगे ही बढ़ना है। मैंने ही ऐसा रास्ता चुना है, मैंने ही ये कर्म किया है, अब मैं पीछे नहीं लौट सकता। जब वो कर्मों का भुगतान हो जाएगा तो ठीक है कि स्वतंत्र हो जाऊंगा। जैसे कोई बहुत बड़ा दरिया हो, इधर जंगल है, उधर जंगल के पार कोई बस्ती है, और दरिया को मैंने पार करना है। दरिया बहुत भयानक है, बड़ा है, तो दरिया पार करने के लिए वो रास्ता पुल तलाशता है, जाता इधर दूर जाके छोटा छोटा सा डावा डोल जैसा एक पुल है, कहते नहीं ये पुल तो डुबा देगा मुझे, चलो नीचे और रास्ता देखते हैं। नीचे जाता है तो और बड़े बड़े पत्थर है और पानी बहुत तेज है, कहते ये तो रात व्यतीत करता है, फिर ऊपर आता है फिर वही पुल आ गया। फिर ऊपर जाता है, इतना लंबा चौड़ा चक्कर कर कर के फिर क्या होता है, कहती और तो कोई रास्ता नहीं है, इधर से ही जाना होगा। हिम्मत करता है, पुल बना हुआ है, धीरे धीरे वो पार हो जाएगा। तो इस प्रकार से मनुष्य के जीवन में है, पशु तो वैसे जंगलों में घूमता रहेगा, तो बीच में दरिया पड़ते हैं, ये इससे ऊपर उठना, इससे ऊपर उठना है, इससे ऊपर उठना है। तो जो निश्चित रास्ता मेरे लिए, जो निश्चित रास्ता, तो इसी रास्ते में से मैंने जाना है, तो इस प्रकार वो पार यदि हो जाएगा, हिम्मत रखेगा, और फिर एक बार जो कर्म मैंने किए थे उसका मतलब हंस के भुगतान कर लेगा, और नए गलत कर्म नहीं करेगा, फिर आगे रास्ता मिलता चला जाएगा। तो कहने का हमारा मतलब यही है कि मनुष्य शरीर, मनुष्य जीवन, ये दिमाग विचार का है। शुभ कर्म करें, विचार कर कर्म करें। दूसरी एक बात तो ये है, तो दो चीजें हैं, बल्कि एक नहीं दो चीजें। मनुष्य शरीर में दो कर्म, दो चीजें हैं, दो दिशाएं। एक तो हमने जो पिछले कर्म किए हुए हैं उन कर्मों का भुगतान करना है, और दूसरा नए शुभ कर्म करने हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि बीज बोया उसी समय फल मिल गया, नहीं होता ना, समय लगता है। अभी आज फसल बीजी है, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, तो ये तो पिछले जन्म का भी हो जाता है। कर्म किए थे, ऐसे संस्कार बने, ऐसे व्यक्तियों के साथ मेल हुआ, ये हुआ वो हुआ, ऐसे परिवार में जन्मे, ऐसा विवाह हुआ, ऐसे मित्र मिले, ऐसे मिले, वो क्या है, अपने जान पहचान नहीं, कर्मानुसार तो पिछले कर्मों का भुगतान संग हुआ है। अच्छा होगा बुरा होगा वो हो गया, तो वो तो हमने भुगतान करना ही करना है, भाग नहीं सकते, कर्म जाल है, है? तो उन कर्मों का भुगतान हम करें, हंस के करें, और साथ ही कि अगले कोई बुरा कर्म ना हो जाए, गलत कर्म नहीं हो जाए। तो ये कौन है, ये मनुष्य शरीर में ही किया जा सकता है, पशु तो बस वैसे पशु प्रकृति कभी न खाए पिए सोए। तो इस प्रकार करने से इसके दिमाग में वो बनता चला जाएगा, निर्णय शक्ति, विवेक शक्ति पैदा हो जाएगी कि सचमुच ऐसा कर्म करने से मुझे परम आनंद का मार्ग मिलेगा, ऐसा कर्म मुझे दुख में डालने वाला होता है। तो विवेक शक्ति बढ़ाने का जो क्षेत्र है ये मनुष्य शरीर, हाँ इसी में बढ़ेगा, और पशु पंछियों में भी नहीं, और हैरानी की बात है देवताओं के पास भी नहीं होती। तो मनुष्य शरीर की महिमा ये है। तो इसमें एक सूत्रम और जोड़ लें थोड़ा सा, आप वैसे कह ही चुके हैं, जो कुछ जो हमें सब दिखाई दे रहा है आंखों के द्वारा बचपन से लेकर आ गए यहाँ तक, इतना ही सब कुछ नहीं है, है ना। हम सब मानते आस्तिक हैं। आस्तिक का मतलब यह है कि इस शरीर से पहले भी हम थे और ये शरीर ना रहने के बाद भी हम रहेंगे, नया शरीर मिलेगा ही, हाँ नया शरीर मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा? वैसा ही मिलेगा जैसे हम अब हैं, जैसे आखिरी समय में थे। यदि करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हमारा दिमाग बिल्कुल विकसित हो चुका है, पता लग चुका है ये शुभ कर्म है ये गलत कर्म है, ऐसा दिमाग पूरा पिछले कर्मों का, गलत कर्मों का या किसी भी कर्मों का हमने भुगतान कर लिया है, तो अगले जन्म में हम बचपन से ही ऐसे ऐसे होंगे। हमारी बुद्धि बिल्कुल तीव्र होगी, विचारों में दृढ़ता होगी और फिर कोई और कोई कर्म जाल में नहीं उलझेंगे और सीधे ही सत्य पथ पर अग्रसर हो सकेंगे। लेकिन ये हमारी मर्जी की बात नहीं है। तीर जो निकल गया है वो तो लौटेगा नहीं है। तो जहाँ महाराज जी कई बार कहा करते थे, ये जो मनुष्य शरीर है पूर्व कर्मों का भुगतान करने के लिए और वर्तमान में शुभ कर्म करने के लिए मिला है, लेकिन इसमें ये पक्का समझ लें कि मेरे ही कर्मों का जाल, उसने मुझे दुख दिया, उसके कारण मुझे दुख हुआ, ये यदि समझ लें, यदि ये दिमाग में बिल्कुल पक्का आ जाए तो दुनिया में इसको कोई दुखी नहीं कर सकता। देखने सुनने में तो कई बार यहाँ तक भी आ जाता है, हमसे तो जी परमात्मा भी आजकल उठा हुआ है। अब परमात्मा को क्या पड़ी अपने ऐसे छोटे छोटे बच्चों से रुष्ट होने की है? उसने कहा तो मैंने ऐसा किया, उसने किया तो ऐसे कर लिया, तो ये तो सब झूठी बातें हैं, धोखा देने, अपने आप को धोखा देने वाली बातें हैं। क्यों? किसी के कहने से जहर तो कोई खाता नहीं है, किसी के कहने से कुएं में छलांग कोई नहीं लगाता है, किसी के कहने से गलत काम कोई नहीं करता है, किसी के कहने सच्चा काम अच्छा काम भी नहीं कोई करता है। हाँ मौत कहते मैंने उसके कारण किया, उसके कहने से किया, लेकिन हमारी समझ में आप प्रेरणा मिल सकती है, विचार मिल सकता है, मेरे मन में ऐसा करने की इच्छा थी, उसने भी कहा तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कर लिया, मेरे मन में पक्का था मैंने नहीं करना है, वो कहता करो करो करो, हाँ तुम कौन होता है मुझे कहने वाला उसे। हाँ जो हमारे अपने अपने तो अपनी अपनी आप को स्वीकार है कि मैंने जो कर्म किया है उसके जिम्मेवार मैं। हाँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, अपने कर्मों को हम खुद स्वीकार कर लें। यदि मैंने ये गलत दुख है ये ऐसा है तो इसका जिम्मेवार मैं हूँ, यदि हम ये स्वीकार कर लेंगे तो फिर उस गलती से मुक्ति का रास्ता मिलता है। यदि उसको उसने किया तो कुछ होने वाला बात नहीं है, दूसरे पर ही दोषारोपण करते रहे, करते चले गए। तो इस सभा में छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़े भी बैठे हैं, सब कुछ बैठे हैं, और ये जो मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी है, आपस में सब लोग घुले मिले हैं, सब लोग ऐसा है, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, ये देखने में सब घुले मिले हैं, आपस में ही हैं, एक छत के नीचे ही बैठे हुए हैं, एक साथ खाते पीते कारोबार करते हैं, लेकिन इतना होते हुए भी हम सब अलग अलग हैं, पता नहीं कहाँ से आए थे, सब अलग हो जाएंगे। देखने में लगता है सब थोड़ी देर के लिए, कर्म जाल है ये सारा, उसने भी कर्म किया मैंने भी कर्म किया, इकट्ठा कर लिया, मिलके कर लिया, लेकिन किया अपने अपने हैं, हैं, अच्छे कर्मों में सहयोग, कई लोगों ने मिलकर कर्म कर लिया भुगतान के समय इकट्ठे हो गए, गलत कर्म किया मिलकर कर लिया करते समय इकट्ठे हो गए, लेकिन था अपना ही अपना, अपना अपना कर्म है। जो दुख हो रहा है मुझे हो रहा है, दूसरे को नहीं हो सकता। यदि सुख हो रहा है कर्म का मुझे होगा, वो सुख का अनुभव चाहे इकट्ठा किया था उसको होगा तो वो भोग, उसको सुख होगा, मुझे होगा। तो सबके बीच में रहते हुए भी चाहे मिलकर कर्म किए थे और सबके बीच इकट्ठे भुगतान, फिर भी अपना अलग अलग ही रहता है। तो अपने कहने का भाव है, स्वार्थ वाली बात नहीं है, अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश करें। ये कर्म किया है तो इसकी जिम्मेवार मैं हूँ। तो एक बात और आकर कहते, अभी तुम कह रहे ना गलत कर्म अच्छा कर्म, अच्छे कर्म का फल अच्छा, गलत कर्म का फल गलत। अब एक आखिरी सूत्र ये है कि फिर अच्छे और गलत कर्म की पहचान क्या हो, है ना? कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा कर्म गलत है, जैसे कि हम अच्छा कर्म करें तो अच्छा फल मिले। मैं नहीं करना है इसमें निश्चित है, लेकिन क्या किस प्रकार से निर्णय करें, तो हम ये छोटी सी बात कह देते हैं। हम चाहते हैं हमें सुख मिले, यही है ना, मैं जैसा करूंगा वैसे ही फल मिलेगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सूत्र एक छोटा सा है, यदि हम दूसरे को सुख देंगे तो ये अच्छा, सुख का मतलब है दूसरे को हित के लिए, दूसरे के विकास के लिए, दूसरे की उन्नति के लिए, दूसरे की मनमर्जी नहीं। सुख देने का मतलब नहीं बच्चा कह रहा है मैंने फिल्म देखने जाना है पैसे, ये कोई अच्छा कर्म नहीं, उसको सुख देने वाली बात नहीं है। हमारी समझ में जो आता है कि अच्छा कर्म है वो करना है दूसरे के प्रति, जिसे मैं समझता हूँ अच्छा कर्म है, यदि हम उसको दूसरे के प्रति करें वही धर्म का कार्य है। तो इस वास्ते 18 पुराणों में वो श्रूयताम धर्म सर्वस्वम शुत्वा चैव वधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशाम न समाचरे। ये शुभ कर्म की परिभाषा है। धर्म का सार सुनो, व्यास जी कह रहे हैं आत्मनः प्रतिकूलानि परेशाम न समाचरे। जो काम मुझे अच्छा नहीं लगता है वो काम मैं दूसरे के प्रति नहीं करूं, बस इसी में सारा सत्र आ जाएगा। हम चाहते हैं कि मुझे कोई अच्छी वाणी बोले, तो पुण्य कर्म क्या हुआ, हम दूसरों के प्रति अच्छी वाणी बोलें, दूसरों के प्रति खराब वाणी ना बोलें, बस और यही बस सूत्र आ गया। हम चाहते हैं कोई मुझे सुख दे, तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरों को जिसके साथ संबंध है उसको सुख देने की भावना, यही पुण्य कर्म है, यही धर्म है ना। जो कहता है मुझे करे, वो कहता है मुझे करे, बस ये गड़बड़ हो जाती है। पाश्चात्य फिलॉसफी में आजकल वो चलता है, बोलते तूने मेरे लिए क्या किया, लेकिन सनातन धर्म में बिल्कुल उसके विपरीत है, मैंने उसके लिए क्या किया। पाश्चात्य नास्तिक दर्शन, पाश्चात्य नहीं कहें, नास्तिक दर्शन में क्या है, जो परमात्मा को नहीं मानते आगे पीछे, उसने मेरे लिए क्या, माता पिता ने मेरे लिए किया क्या, पत्नी ने मेरे लिए क्या, पति ने मेरे लिए क्या किया है, उसने मेरे लिए क्या किया। तो मांगते हैं, मांग रहे हैं, मांगते हैं हम, लेकिन सनातन धर्म ये कहता है तूने उसके लिए क्या किया, कितना त्याग किया है, क्या सेवा की है, तूने क्या किया है। हाँ, यदि हम जो वसीदा सा जो चाहते हैं कि मुझे वो ऐसा करे, तो हम उसके दूसरे के प्रति करें, यदि नहीं कर सकते कम से कम गलत तो न बोले। यदि हम चाहते हैं कोई मुझसे अच्छी बात करे तो कम से कम दूसरों से गलत बात तो ना करें। बस इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मन, हाँ मन अंतर्मुख हो जाएगा और दूसरे में बाहर भागेगा, उसने नहीं किया, उसने नहीं किया, मुझे ऐसे ऐसा। तो ये है पुण्य कर्म और पाप कर्म की या धर्म और अधर्म की सीधी सी परिभाषा। ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। हाँ, जिसने ये समझ लिया, हाँ तप का रास्ता है, ये त्याग का रास्ता है, ये धर्म का पथ है, इसके ऊपर चलेंगे तो बढ़ते जाएंगे, बढ़ते। मैंने तो सारी वो इसके लिए ये किया और वो बदले में मुझे क्या किया, बस वहीं पर थोड़ा सा फिर गड़बड़ हो गया। एक पुरानी कहानी हम कहा करते थे, अकबर ने दरबार लगा रखा है, सुनी होगी बहुत लोगों ने, तो सारे सभासद बैठे हुए हैं। तो अकबर ने एक लकीर खींच दी, ये आ भाई, अब बाकी मंत्री को बुलाया, कहते इस लकीर को छोटा करो। तो मंत्री कहते ये इसमें क्या मुश्किल है, जान पाए ये तो भी कर देते, आए नहीं इसको हाथ नहीं लगाना, इस लकीर को छेड़ना नहीं, दूर से ही छोटी करो। अब ये कहते ये कैसे हो सकता है, बिना छेड़े बिना इसके जोड़े तोड़े इस लकीर को कैसे छोटे करेंगे। तो सब चकरा गए उस समय। तो बीरबल आया, कहते नहीं बिल्कुल आसान है। अकबर ने कहा देखो इसको छोटे नहीं करना, मिटाने बिल्कुल नहीं मिटाएंगे, दूर से ही कर देंगे। सब मंत्री भी हैरान है, बीरबल क्या करेगा इसको। तो बीरबल आया, उसने ए लंबी देखा, कहते देखो उसको छोटी। हाँ तो ये बात है। तो एक लंबी लकीर धर्म की खींचते चले जाएं। यदि ऐसा है, दूसरा कोई ऐसा है, मान लीजिए परिस्थिति ऐसी बन गई है, तो उसको यदि कहेंगे तुम ऐसे करो, नहीं भाई हम धर्म पथ से च्युत हो गए। तो मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो धर्म है, उसको मैं समझूं और मंगता नहीं बनूं कि वो ऐसा करे वो ऐसा करे। अपने धर्म को समझूं, अपने कर्तव्य को समझूं और लकीर अभी वो बढ़ाता जाए, दूसरे की लकीर अपने आप बौनी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये है धर्म, ये त्याग का पथ, तपस्या का पथ, परमार्थ का पथ, भक्ति का पथ, जिससे अहम खत्म होता है, अहम का नाश, वासनाओं का नाश, और मिलता है अहम के स्थान पर परमात्मा की जागृति, अनंत शक्ति की जागरण होता है। तो ये शुभ कर्म है, मैंने ही करना है, मनुष्य शरीर में ही संभव है और किसी शरीर में संभव नहीं है। तो ये सूत्र समझ लें, मैंने ही करना है, इसके लिए मुझे ये मनुष्य शरीर मिला है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। तो कठिन करते जाएं, इसका फल मैंने किया है, तो उसका फल है अखंड आनंद परमात्मा की प्राप्ति। तो अवसर मिला हुआ भी चूक नहीं जाएं, नहीं तो फिर चक्कर स्वकर्म सूत्र ग्रति तो ही धोखा, कर्म जाल में फंसे रहेंगे, उलझे रहेंगे, भटकते रहेंगे और दुख उठाते रहेंगे। उसने किया, दूसरों को दोषारोपण लगाते रहेंगे, तो दूसरों को दोषारोपण ना करते हुए खुद अपने पांव पर खड़े। इतने काफी अभी हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।